मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 11 जुलाई 2018 है और आज के इस afias.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबकी उन क्षमताओं से परिचित कराने जा रहा हूं, दरअसल जो हमारे अंदर होती तो हैं लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि वह हमारे अंदर है भी। और ये विचार मेरे मन में तब आया जब मैं आज सुबह का अखबार पढ़ रहा था और पिछले 2-3 दिन से वो बात लगातार धीरे 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 बढ़ती चली जा रही थी और कल उस घटना ने फाइनल शेप ले लिया और आज आपने सुबह के अखबार में ये बड़ी सुखद खबर पढ़ी होगी, बेहद सुखद खबर और यहां तक कि आश्चर्य में डालने वाली खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से थाईलैंड की एक गुफा से 17 दिन के बाद फुटबॉल टीम के जो 12 बच्चे थे उन्हें बचा लिया गया 17 दिनों के बाद। और ये जो बच्चे थे ये फुटबॉल टीम के प्लेयर्स थे और वो भी अंडर 16 टीम के प्लेयर, यानी कि इनकी जो उम्र थी सभी की वो 16 साल से कम उम्र थी। इस घटना को आप आज थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस घटना को जो जिसमें भी थोड़ा खुलासे के साथ बात कही गई हो, विस्तार के साथ लिखा गया हो, उसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक इसे महसूस नहीं कर सकेंगे और जब तक महसूस नहीं कर सकेंगे तब तक आप अपने अंदर की उस क्षमता को भी महसूस नहीं कर सकेंगे जो आपके अंदर दरअसल है लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं और अगर थोड़ा बहुत कभी जान भी जाते हैं तो उस पर यकीन नहीं होता है। मित्रों ये छोटे छोटे बच्चे गुफा में गए हुए थे राइट, और गुफा में जब पहुंचे तो फिर गुफा में पानी भरने लगा और पानी भरने के कारण गुफा बंद हो गई। अब ये बच्चे क्या करें, कल्पना करके देखिए कि गुफा के अंदर का परिदृश्य कि गुफा में क्या रहता होगा, कैसी स्थितियां होंगी और उस पर पानी भर गया है। जब पानी भरने लगा तो अब इनको अपने बचाव के लिए जगह चाहिए थी, नहीं तो पानी में सब डूब करके खत्म हो चुके होते, आज हमारे सामने वो जीवित रूप में बाहर नहीं आते। तो अब आप देखें कि इन लोगों ने क्या किया, अखबार लिख रहे हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक उन्होंने ऊंचे जगह की तलाश की कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां तक पानी पहुंच ना पाए, और जब उन्होंने तलाश की तो वो जगह मिल भी गई और वहां वो बच्चे बैठे रहे। मित्रों कितने दिन तक बैठे रहे, 17 दिन तक बैठे रहे। तो ये क्या थी जिसने उन्हें 17 दिन तक जीवित रखा, कल्पना करके देखिए कि जो जीवन की जो दैनिक चर्याएं हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं वो सब वो किस तरीके से पूरी कर रहे होंगे उन 17 दिनों तक, और गुफा के अंदर पानी भर रहा है, सांस लेने के लिए उस तरह से खुली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, किस तरीके से वो रह रहे होंगे जरा महसूस कीजिए। चलिए तो एक पक्ष हो गया, ये इन लड़कों की जिज्ञासा हो गई, जीने की उत्कट इच्छा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब ये घटना इस घटना की जानकारी मिली तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई और अब उसने सरेंडर नहीं किया, दुनिया ने भी देखे सरेंडर नहीं किया कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, मतलब बाहर भी जो लोग हैं उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हथियार नहीं डाले, नहीं हम कर सकते हैं, करेंगे आखिरी दम तक करेंगे भले ही सफलता हाथ न लगे। और कल्पना करके देखे फिर से जरा सा दिमाग को ले जाइए कि किस तरीके से उन्होंने उस गुफा में छेद किया होगा, किस लोकेशन पर छेद किया होगा, किस तरीके से पानी में तैरकर जो दुनिया के जो बेस्ट गोताखोर थे स्विमर थे वे अंदर पहुंचे, किस तरीके से डॉक्टरों की टीम भी गई, उन बच्चों को निकाल कर लाया गया, पहले कुछ बच्चे निकाले गए और सबसे सुखद बात यह कि सारे के सारे बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। तो दोस्तों यहां दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जो संकट में फंसे हुए हैं वो किस तरीके से उस संकट का सामना करते हैं और वो दूसरा पक्ष वह जो उन्हें उन संकटों से उभारने की कोशिश कर रहा है और वह भी हार नहीं मान रहा है, किसी भी कीमत पर हार नहीं मान रहा है, वह कोशिश कर रहा है भले ही हार क्यों न जाए, यानी कि हथियार डाल नहीं रहा है और अंततः यह पूरा का पूरा जो परिश्रम था एक बहुत सुखद परिणाम में तब्दील हो गया। अब एक छोटा सा सवाल है कि अगर इन बच्चों से यह सवाल किया जाता कि मान लो कि तुम एक गुफा में घूमने गए हुए हो और तुम्हारे घूमने अंदर जाने के बाद उसमें पानी भर जाता है गुफा में, और अब तुम क्या करोगे और 15-16-17 दिन तक तुम्हें उस गुफा में रहना होगा, तो क्या तुम जीवित बचोगे? उन बच्चों का जवाब क्या होता? सीधा और सरल जवाब होता और तुरंत जवाब होता कि बचने का सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई बच सकता है क्या? पहले वो यही कहते। लेकिन जब वो संकट सामने आ गया तो आप देखिए कि हुआ क्या, कि जब जिंदगी के सामने चुनौतियां आती हैं तो हमारे अंदर वो जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं उन चुनौतियों का मुकाबला करने वाली ताकत भी पैदा करती है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता का एक अद्भुत गुण है कि उसमें हार्मोन्स इस तरह से डेवलप होंगे, मानसिक शक्ति इस तरह से डेवलप होगी, इस तरह से विकसित होगी, एफर्ट हम इस तरीके से करने लगेंगे, दिमाग इतनी तेजी से उपाय सोचने लगेगा, शरीर में ताकत इतनी ज्यादा आ जाएगी, और इन सब का कॉम्बिनेशन होकर के फिर वह उन चुनौतियों के विरुद्ध हमें खड़ा कर देता है। दोस्तों यहां यही हुआ है, मतलब जीवन की जो शक्ति है, जो जिजीवशा है, जीवन की शक्ति का मतलब है हमारी अपनी अपनी क्षमताएं, और जिजीवशा का मतलब है जीने की अभिलाषा। हम मरना नहीं चाहते, अंतिम सांस तक हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो सब कुछ खत्म है। उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है और मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां एक बात और है जो मैं आप लोगों के सामने विशेष रूप से रखना चाहूंगा। संकट आते हैं, नो डाउट संकट हमें सिखाते हैं, संकट हमारे जीवन की सबसे अच्छी पाठशाला होती है। बिना संकट के हम सीख नहीं सकते, और यह बात अलग है कि हम जिंदगी भर संकटों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि संकट ना आए, कोई नहीं चाहता है संकट आए, लेकिन यदि आ जाता है तो ये मान करके चलिए कि वो आपको सिखाने के लिए आया है। उस समय धैर्य रखिए, उसका मुकाबला कीजिए, सरेंडर मत कीजिए। अब फ्रेंड्स ये कर्म है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, और ये बड़ा खूबसूरत उदाहरण है, संदर्भ है, और ये संदर्भ है मित्रों गीता का। गीता का अंतिम श्लोक आप पढ़िए, मैं आखिरी श्लोक की बात कर रहा हूं जिससे गीता समाप्त हो रही है। इसकी शुरुआत हुई है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र के बीच क्या हो रहा है, मुझे बताओ। यहां से गीता की शुरुआत हुई है। और अब आप देखिए कि जो आंखों देखा हाल सुना रहा है संजय, गीता का अंत किस तरीके से हुआ है, यानी कि कृष्ण के अंतिम शब्द हैं जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और ये कृष्ण का मत नहीं है, याद रखिए कि ये संजय का मत है। संजय कह रहा है, यहां जो बात कही जा रही है वो संजय का मत है। वो क्या कहते हैं थोड़ा सा समझिए, और मुझे लगता है कि इसे समझना चाहिए, नहीं तो फिर हमें क्या लगता है कि सिर्फ मेहनत 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 हम मेहनत करते रहे, उससे बात नहीं बनती है, उससे तो चीजें अधूरी हो जाती हैं, और सच पूछे तो वहीं हम हार भी मानते हैं, क्योंकि फिर परिणाम सामने नहीं आते और हमें लगता है कि हमने किया तो खूब लेकिन परिणाम सामने तो आए नहीं, तो क्या मतलब है करने से। तो देखिए वो क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वृजयो भूतिर धुर्वा नीतिर मतिर मम। इसका हिंदी में अर्थ है तो संजय कह रहे हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, दो लोग हो गए कृष्ण और अर्जुन, जहां ये दोनों हैं वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, यानी कि यह संजय का मत है। अब आप देखिए कि यहां जो कृष्ण है वो क्या है और जो अर्जुन है वो क्या है, आपको समझना होगा। कृष्ण बेसिकली युक्ति है, ज्ञान है, फिलॉसफी है, तरीका है, जानकारी है, वो जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन केवल जानने भर से कुछ नहीं होगा। अर्जुन क्या है, अर्जुन कर्म है, इस जानने को एक्शन में कन्वर्ट करने वाला एक चरित्र है, इसका मतलब यह हुआ कि ये नहीं कि ये दो अलग अलग पात्र हैं, हमारे अंदर ही इन दोनों की जरूरत होती है। हम जब भी किसी काम को करते हैं, और अगर वो काम बड़ा है तब तो और भी ज्यादा जरूरी है कि हम जाने कि इसे किया कैसे जा सकता है। वो कृष्ण है, कृष्ण युक्ति बताते हैं, कृष्ण ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसा करो। अर्जुन को वो यही कहते हैं, अर्जुन अकेले ही युद्ध नहीं जीत पाता, पराक्रम चाहे वो जितना भी दिखाए, पराक्रमी जितना भी हो, लेकिन बिना युक्ति के तो महाभारत में पांडव कब के हार चुके होते। तो वो ज्ञान है, तो ज्ञान और कर्म जब इन दोनों का समन्वय होता है तो फिर ऐश्वर्य भी मिलेगा, विजय भी मिलेगी, अलौकिक शक्ति भी मिलेगी, और वहां नीति भी रहेगी, एथिक्स भी रहेगा, नियम कानून और धर्म का पालन भी होगा। मित्रों, आप इस थाईलैंड वाली घटना में इन दोनों चीजों को देखेंगे। जो रहने वाले अंदर लड़के हैं उन्होंने पराक्रम दिखाया और ज्ञान का भी प्रयोग किया कि वो ऊंची चट्टान पर पहुंच गए और प्रतीक्षा करते रहे, अंत तक हार नहीं मानी। और फिर जो उन्हें निकालने वाले जो लोग थे उन्होंने भी बकायदे तरीके अपनाए, कहां छेद करना चाहिए, कैसे वहां तक पहुंचना चाहिए, और उन्होंने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी पराक्रम दिखाया। तो इन दोनों ग्रुप में आप एक साथ कृष्ण और अर्जुन दोनों का ही संयोग पाते हैं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।